मैं समय हूँ, मैं सब देख रहा हूँ, परंतु मुझे कोई नहीं देख रहा। आज मैं आपको द्वापर युग में ले चलता हूँ। बात उस समय की है जिस समय महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। महाभारत युद्ध जीतने के पश्चात पांडवों ने विजय रूपी एक घोड़ा छोड़ दिया, जिसका रक्षक के रूप में उसके पीछे पीछे रहने को धर्म युधिष्ठिर ने अपने अनुज अर्जुन को रहने के लिए भेज दिया। जब वो विजय रूपी घोड़ा चारों दिशाओं में घूमने के बाद अवधपुरी की सीमा में प्रवेश किया, तो अवधपुरी के राजकुमार ने उस विजय रूपी घोड़े को पकड़ लिया। तो कुंती पुत्र अर्जुन ने कहा कि कुमार, तुम इस विजय रूपी घोड़े को छोड़ दो, तुम अभी बच्चे हो। लेकिन राजकुमार धीरध्वज अपने प्रतिद्वंद्वी से युद्ध के लिए ललकारने लगा और युद्ध करने लगा। युद्ध करते करते राजकुमार ने अपने प्रतिद्वंद्वी उस महाभारत को विजय करने वाले कुंती पुत्र अर्जुन को परास्त कर दिया। परास्त अर्जुन दुखी मन से अपने सखा भगवान कृष्ण की तरफ चलने लगा। उधर वो मायाधारी भगवान कृष्ण सारी लीला को अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहा था और देखते देखते उसी तरफ चलने लगा जिस तरफ से परास्त अर्जुन चले आ रहे थे। रास्ते में भगवान कृष्ण देखकर अर्जुन का घमंड जागृत हो उठा और कहा, हे कृष्ण, मैंने महाभारत के युद्ध में बड़े बड़े योद्धाओं को परास्त किया है और द्रौपदी स्वयंवर में जब सभी योद्धा मीन को नहीं बिंद पाए थे, उस मीन को बिंधने वाला ये कुंती पुत्र अर्जुन था। मेरे जैसा भक्त तुम्हारा और कोई नहीं है। फिर आज मुझको एक बालक ने युद्ध में परास्त किया। ये सुनकर भगवान कृष्ण को गुस्सा आ गया और कहने लगा, हे अर्जुन, तुम घमंडी तो हो। तुमने एक बार कहा कि मेरे भाई धर्म से बड़ा दानी कोई नहीं, तो उसी समय मैंने तुम्हारा घमंड तोड़ दिया और आज तू कह रहा है कि मेरा तुमसे बड़ा भक्त इस संसार में कोई नहीं। तो हे अर्जुन, मैं तुम्हें आज मेरा तुमसे बड़ा भक्त व कर्ण से भी बड़ा दानी दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ। भगवान कृष्ण व अर्जुन साधुओं का रूप धारण कर और एक माया रूपी शेर लेकर अवधपुरी की तरफ चलते हैं और राजा मूरध्वज के दरबार में पहुंचते हैं।
अलोक निरंजन, अलोक निरंजन, अलोक निरंजन, अलोक निरंजन।
प्रणाम महाराज।
खुश रहो बस, खुश रहो। हमारे आगमन की सूचना अपने भारत तक पहुंचा दी। अलोक निरंजन, अलोक निरंजन।
प्रणाम महाराज। महाराज जी जय हो। कहो द्वारपाल, क्या समाचार लाए हो?
महाराज, राजमहल के मुख्य द्वार पर दो साधु और एक शेर है, आपसे मिलना चाहते हैं।
ठीक है, मैं स्वयं ही उनके स्वागत के लिए चलता हूँ।
निरंजन, अलोक निरंजन।
संसार वालों सुख से जियो, संसार वालों सुख से जियो। संतों के मुख से निकले दुआएं, संसार वालों सुख से जियो, संसार वालों सुख से जियो। संतों के मुख से निकले दुआएं, संसार वालों सुख से जियो, संसार वालों सुख से जियो। हमेशा सदा रहे तेरे साथ, हमेशा खुदा रहे
साथ तेरे परिवार रहे, ना कभी किसी से जुदा रहे।
तेरा राज हमेशा सदा रहे तेरे साथ, हमेशा खुदा रहे
साथ तेरे परिवार रहे, ना कभी किसी से जुदा रहे।
संतों के मुख से निकले दुआएं, संतों के मुख से ये निकले दुआएं, संसार वालों सुख से जियो, संसार वालों सुख से जियो। सदगान किया हम सुन कर आए,
हर पल जय जयकार करें, हर बार करें तू हमें जिमाए।
दूर दूर तक नाम तेरा सदगान किया हम सुन कर आए,
हर पल जय जयकार करें, हर बार करें तू हमें जिमाए।
काम करो कुछ नहीं घटेगा देने वालों,
ले लो दुआएं संतों की भर और भरेगा देने वालों।
आगे मिला है उसको अब जो दिया है, संसार वालों सुख से जियो, संसार वालों सुख से जियो। संतों के मुख से ये निकले
संसार वालों सुख से जियो, संसार वालों सुख से जियो।
बैठिए ऋषिवर। आप बैठिए, मैं आपके लिए भोजन की व्यवस्था करवा रहा हूँ।
सुनिए राजन।
कहिए महाराज।
राजन, हमारा शेर काफी दिनों से भूखा है और वो खाना इसी महल में खाएगा।
आप निश्चिंत रहे ऋषिवर, आपका शेर भी भरपेट भोजन करेगा।
राजन, हमने सुना है आप बहुत बड़े दानी हो, आपके दान की टेकरी चारों दिशाओं में फैली हुई है, यही सुनकर हम आपके दरबार में आए। तो क्या राजन हमें भी?
हाँ हाँ विश्वास, आप निश्चिंत रहे, मैं आपकी बात की अच्छे तरह से समझ गया। आप पहले भोजन ग्रहण कर लीजिए, उसके बाद जो कुछ भी दान दक्षिण आप मांगेंगे मैं अवश्य आपको दूंगा।
राजन, मैं आपसे एक बात।
हाँ हाँ ऋषिवर, ये संकोच होकर कहिए।
राजन, हमारा शेर जानवर का मांस कदापि नहीं खाता, वो सिर्फ इंसानों का ही मांस खाता है।
ठीक है ऋषिवर,
पर राजन भोजन करने से पहले तुम्हें तीन वचन देने होंगे और उनका पालन भी करना होगा। क्या मेरी बात से सहमत है?
ऋषिवर, मैं आप दोनों को साक्षी मानकर अपने आप को आपके तीन वचनों के लिए वचनबद्ध करता हूँ। निज कुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मांगे ऋषिवर, आप क्या मांगना चाहते हैं?
हाँ तो राजन, मेरा पहला वचन, आप अपने बेटे को चीर कर उसके मांस का भोजन मेरे शेर को कराएंगे। मेरा दूसरा वचन, आप और आपकी धर्मपत्नी विद्याधरनी अपने बेटे को हमारी आंखों के सामने से आरे से चीर।
मेरा तीसरा वचन, जब आपका इकलौता बेटा वीरध्वज आरे से चीर रहा होगा तो उस वक्त आप और आपकी धर्मपत्नी की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। अगर आप और आपकी धर्मपत्नी की आंखों में आंसू आए तो मेरा शेर कदापि भोजन नहीं करेगा।
इस सोच में पड़ गए राजन।
राजन, अगर आप अपना वचन पूरा करने में असमर्थ हैं तो आप अपना वचन वापस ले सकते हैं।
क्या कहा? मैं राजा मोरध्वज अपने वचनों को वापस ले लूं? कदापि नहीं ऋषिवर, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता।
तो ठीक है राजन, जाइए और आप अपने वचनों को पूरा कीजिए।
आप निश्चिंत रहो ऋषिवर, जो वचन मैंने आपको दिए हैं, जिनके लिए मैं वचनबद्ध हुआ हूं, उनको मैं अवश्य पूरा करूंगा।
क्या बात है महाराज, आज आप कुछ उदास नजर आ रहे हैं। आपके चेहरे का वो तेज कुछ फीका फीका नजर आ रहा है। आपका ये बुझा बुझा चेहरा किसी अनहोनी का संकेत दे रहा है महाराज। क्या बात है, कुछ तो बताइए महाराज, क्या बात है?
हाँ महारानी, आप ठीक कहती हैं। आज मैंने अपने पुत्र वीरध्वज को
क्या किया है? क्या हुआ मेरी बेटी को? कुछ तो बोलिए महाराज, क्या बात है?
बेटे ने कुर्बान ठाक लाज साही बस्तर तन पे सर पे देखी तेरे पाग इतनी जल्दी बदल गए क्यों आज पिया दी मेरे भाग
उसमें अपना सी झुकाया दो साधु एक शेर है दर पे आगे ये फरमान सुनाया ओ कुछ बात लगे थी खास यास ना थी लाभ हो
आपने खूब धन दौलत दान किया, लेकिन मैंने आपको कभी नहीं टोका। लेकिन आज आप अकेले अपने इकलौते पुत्र को दान में देने का फैसला कर लिया और मुझसे विचार विमर्श भी नहीं किया। क्या वे मेरा पुत्र नहीं? क्या मेरा उस पर कोई अधिकार नहीं? क्या मैंने उसे जन्म नहीं दिया? क्या मैं उसकी माँ नहीं हूँ? क्या मैंने उसे अपने स्तनों से दूध नहीं पिलाया? बोलिए महाराज, क्या मेरा अपने पुत्र पर कोई अधिकार नहीं है?
संभालो महाराज, अपने आप को संभालो। इसमें विचार विमर्श का नहीं
है। कहते संभालो महाराज, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं महाराज, मैं क्या करूं।
ये समय बीतता का है महाराज, हमारी परीक्षा का है। आप घबराओ नहीं, इतना विचलित होने की जरूरत नहीं। आखिर आप एक छत्रण, अगर इस संकट की घड़ी में आप ही मेरा साथ नहीं दोगे तो बताओ महाराज, मैं अकेला उन संतों को दिए गए वचनों को कैसे निभा पाऊंगा? बताओ महारानी, कैसे निभा
पाऊंगा? कैसी सहायता की दुहाई मांग रहे हैं महाराज? एक माँ से या एक पत्नी से? एक माँ से सहायता कि वे अपने पुत्र को स्वयं आरी से चीर कर शेर के मुंह का ग्रास बना दे, या एक पत्नी से कि वे अपने पति के दिए हुए वचनों को निभाने की खातिर किसी निर्दोष की हत्या करने में उसका साथ दे? बोलिए महाराज, आप खामोश क्यों हैं? वो दीपक जिससे हमारी दुनिया रोशन है, कुछ ही क्षणों में हवा का झोंका आएगा और वह दीपक हमेशा हमेशा के लिए बुझ जाएगा। उसके बाद चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा। उस अंधेरे के बारे में क्या सोचना अरे पुत्र, क्या सोचना?
महारानी, आप इतना हताश न होइए और आने वाले इतिहास के बारे में सोचिए। क्या मुझे वचन पलट राजा के रूप में जाना जाए? क्या आने वाली पीढ़ी मुझे मिथ्यावासी, कायर, भीरू ऐसी उपाधियों से नवाज? मरणोपरांत मैं अपने पूर्वजों को क्या मुंह दिखाऊंगा? मुझे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, महाप्रलय भी आएगी तो मेरी आत्मा भटकती है। मुझे कहीं भी शांति नहीं मिलेगी, कहीं भी शांति नहीं मिलेगी।
मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मैं कुछ देर के लिए उस मोह में फंसकर अपने पति धर्म को भूल बैठी थी महाराज, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे माफ कर दीजिए।
नहीं महारानी, सुबह का फूला अगर शाम को घर लौट आए उसको फूला हुआ नहीं कहते।
महाराज, मुझे बस एक चिंता खाई जा रही है।
अब कौन सी चिंता आपको सता रही है महारानी?
आर्य पुत्र, जब बच्चा पैदा होता है तो उस पर सबसे पहले उसकी माता का अधिकार होता है। जब बच्चा शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाता है तो उस पर उसके गुरु का अधिकार सबसे अधिक होता है, और जब उसका विवाह हो जाता है तो उस पर सबसे अधिक अधिकार उसकी धर्म पत्नी का होता है। मैं लाजवंती के बारे में सोच रही हूँ, लाजवंती को कैसे मारा?
ठीक है महारानी, मैं अभी लाजवंती के पास जाता हूँ।
नमस्कार पिताश्री।
खुश रहो बुद्धि।
क्या बात है पिताश्री, आज आपने मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद नहीं दिया।
हाँ पुत्री, मुझसे भूल हो गई।
कोई बात नहीं पिताश्री, कोई बात नहीं। आप खड़े क्यों हैं पिताश्री, बैठिए ना।
नहीं पुत्री, आज मैं बैठने के लिए नहीं आया, बल्कि मैं कुछ मांगने आया। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मुझे निराश नहीं करोगे, निराश नहीं करोगे।
पिताश्री, मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं आपको दूं?
पुत्री, आज मेरी लाज तुम्हारे हाथ में है। अपने स्वभाव को मेरी झोली में डाल दो पुत्री, अपने स्वभाव को मेरी झोली में डाल।
पिताश्री, ये आप क्या कह रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। इज्जत, धीर, झोली, सुहाग, ये सब क्या है पिताश्री?
पुत्री, आज सुबह दो साधु और एक शेर हमारे दरबार में आया और उन्होंने मुझे अपने बंधनों से बांध दिया, मेरे से वचन ले लिए।
वचन? क्या वचन लिया पिताश्री? आप चुप क्यों हो, बोलिए ना।
नहीं पुत्री, मेरे से सब कुछ नहीं होगा, मेरे से सब नहीं कहा जाएगा।
पिताश्री, आप इतना घबरा रहे हैं और आपकी आवाज भी कांप रही है, आखिर बात क्या है, कुछ तो बोलिए।
पुत्री, उन साधुओं ने मेरे से वचन लिए, मैं धीर दोष को आरे से चीर कर उसके टुकड़े टुकड़े कर उनके साथ आए हुए शेर को खिलाऊं।
चक्कर आ गया था, आप घबराइए नहीं, मैं ठीक हूं माताश्री।
उठो बेटी, उठो।
पुत्री, मुझे क्षमा करना, मैंने तुम्हें पूछे ही बिना इतना बड़ा फैसला कर लिया। मुझे क्षमा करना पुत्री, मुझे क्षमा करना।
पिताश्री, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं पिताश्री, भला आप भी कोई गलत निर्णय ले सकते? कौन अभागा बाप होगा जो अपनी बेटी के भविष्य के बारे में गलत सोचेगा।
पुत्री, इस समय तुम्हें बहुत कष्ट हो रहा होगा, ये मैं भली भांति समझ सकता हूँ। ये दिन तो तुम्हारे हंसने खेलने के थे।
पिताश्री, आप ना की परेशान हो रहे, मैं अपने मन को समझा लूंगी और ये सोच के रह जाऊंगी कि मेरा
और उनका शायद यही तक मेल था।
इसमें किंतु और परंतु का तो कोई प्रश्न नहीं है। अब मैंने भी फैसला कर लिया, मैं एक विधवा का जीवन गुजार लूंगी, लेकिन कभी अपने कुल पे आंच नहीं आने दूंगी।
We'll be right back.
लाजी बचा दे बचन भरे जो हमने आदि निभा दे जाने खुदा जाने सदा छोड़ो घबराना से जिमाना पड़ेगा
का मेहमान है और तू अपनी माता से हमेशा हमेशा के लिए दूर होने वाला है।
ये बहकी बहकी बात आखिर क्या मांग रहा है पिताश्री? आप ही कुछ कहिए।
पुत्र, दो महात्माओं ने तुम्हारे पिता से वचन लिया है कि वे भोजन तभी ग्रहण करेंगे। नहीं पुत्र, नहीं
पुत्र, हम दोनों को उन साधुओं के सामने तुम्हें हारे से चीर कर तुम्हारे शरीर के टुकड़े टुकड़े करके
उनके साथ आए हुए शेर को खिलाना होगा। इसके उपरांत ही वो साधु हमारे घर का अनुग्रहण करेंगे, वरना हमारे घर का अनुग्रह।
पिताश्री इतनी सी बात के लिए परेशान है? ये तो मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है जो मैं आपके कुछ तो काम आया, वरना यह हाड़ मांस का अस्थि पिंजर यूं ही व्यर्थ जाता। आप निसंकोच होकर के अपने वचन निभाइए।
चलो महारानी, हम चलते हैं।
ये सब क्या हो गया? मैंने किसी का क्या बिगाड़? क्यों हमारी खुशियों को नजर लग गई? देख रहे हैं आप ये मंगल सूत्र, देख रहे हैं आप ये चूड़ियां, ये सिंदूर, ये साजो सामान और ये हार और श्रृंगार। कुछ ही क्षणों में मेरे लिए सब बेकार हो जाए। क्या विधाता ने मेरे भाग्य में यही लिखा था? प्रार्थना, इतनी लंबी जिंदगी मैं किसके सहारे गुजारूंगी? प्रार्थना, किसके सहारे? आने वाले तूफान का एहसास मुझे अभी से हो रहा। इस कथा समुद्र में क्या मेरी नाव किनारे लगने से पहले ही डूब जाए? प्रार्थना, जी में आता है अपने हाथों ही। नहीं,
राजवंती, अगर तूफान का एहसास नाविक को पहले से हो और वो किस्मत के सहारे अपनी नाव की खेना छोड़ तो तूफान आने से पहले ही वो अवश्य डूब जाए। लाजवंती, जिनके हौसले बुलंद होते हैं, समुद्री तूफान उनका कुछ नहीं, वो हिम्मत और साहस के सहारे किनारे तक पहुंच जाते हैं।
मेरे सपने सभी अधूरे रह गए, मेरे सपने सभी अधूरे रह गए, मेरे सपने सभी अधूरे रह गए।
सपने सभी अधूरे रह गए।
पे सारा बोझ अब हम से है गए, दिल पे सारा बोझ अब हम से है गए।
ख्यालों के वो महल सभी आज ढह गए,
मेरे सपने सभी अधूरे रह गए, मेरे सपने समुंदर सूखते ही रह गए, भरे समुंदर सूखते ही रह गए।
ख्यालों के वो महल सभी आज ढह गए,
मेरे सपने सभी अधूरे रह गए, मेरे सपने
राजवंती, अपने आप को समझाओ। हमारा तुम्हारा मिलन बस इतने ही दिनों का था।
कैसे समझाओ, कैसे समझाओ प्रार्थना कि मन बहुत चंचल होता, इसे नहीं संभाला जाता प्रार्थना, इसे नहीं संभाला जाता।
रामसुंदर
कौन है?
प्रणाम महाराज।
आप स्वयं चलकर मुझ गरीब की झोपड़ी पर आए, मैं तो धन्य हो गया महाराज, मैं तो धन्य हो गया।
देखो श्याम सुंदर, जल्दी से जाकर एक तेज धार का आरा लेकर आओ। वो इतना तेज होना चाहिए कि मेरे बेटे के ऊपर जब चले तो उसको लेस मात्र भी कष्ट न हो। जाओ जल्दी लेकर आओ।
जो हुकुम महाराज। जी महाराज।
महारानी धीर दोष को लेकर क्या हो?
ठीक है आर्य पुत्र, तुम्हें इसी वक्त मेरे साथ चलना होगा, तुम्हें तुम्हारे पिताजी ने बुलाया है।
माताश्री कुछ नहीं, काश ये वक्त यही रहना चाहिए।
ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा।
चलिए माताश्री,
सिर जिमाने को मुझे यारे से
क्लियर कर दिया आपने।
आप ठीक कहते हैं महाराज।
लीजिए ऋषिवर, इसे गौर से देखिए कि मेरा इकलौता पुत्र धीरध्वज है।
हाँ तो ठीक है राजन, आप अपने वचन को पूरा करिए।
तो राजन अब देर किस बात की?
ठीक है ऋषिवर,
आप अपने हाथों से मेरे शेर को भोजन कराइए।
धन्य हो राजन, धन्य हो, तुमने अपना वचन पूरा किया।
ऋषिवर अब आप लोग भोजन ग्रहण कीजिए,
पर एक शर्त पर।
अब कौन सी शर्त है ऋषिवर?
राजन तुम अपने बेटे का नाम लेकर पुकारो।
ऋषिवर जिसे मौत खा गई हो क्या उसे पुकारने से वो जिंदा हो जाएगा?
राजन एक बारी अपने बेटे को पुकार कर कदर देखो।
ठीक है ऋषिवर।
तेरा पिता बुलावे आजा, कहां छिप गया चांद सितारा, मेरी दुनिया रोशन तुझसे, मेरे राज का राज दुलारा। मेरी दुनिया रोशन तुझसे, मेरे राज का राज दुलारा। तेरा पिता बुलावे आजा, कहाँ छिप गया चांद सितारा, तेरी दुनिया रोशन तुझसे, मेरे राज का राज दुलारा। मेरी दुनिया रोशन तुझसे, मेरे राज का राज दुलारा। मेरी दुनिया रोशन तुझसे, तारा मेरी दुनिया रोशन तुझसे मेरे दिल का राज दुलारा मेरी दुनिया रोशन तुझसे मेरे राज का राज दुलारा बुलावे आजा कहाँ छिप गया चांद सितारा मेरी दुनिया रोशन तुझसे मेरे राज का राज दुलारा मेरी दुनिया रोशन तुझसे मेरे राज का राज दुलारा।
देखो राजन वो तुम्हारा पुत्र चला आ रहा है।
हाँ राजन वो देखो सामने
मेरा पुत्र धीरवर। देखो महारानी देखो हमारा पुत्र आ गया हमारा पुत्र आ गया महारानी।
हाँ भी कहते महाराज हाँ भी कहते हमारा पुत्र आ गया मेरा धीर मेरा धीरवर मेरा बेटा आ गया महाराज।
रिसीवर अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि आप साधारण महात्मा नहीं हैं।
हाँ राजन तुमने ठीक कहा। महाभारत में बड़े बड़े योद्धाओं को परस्त करने वाला ये कुंती अर्जुन और मैं मुझे तो ये सारा संसार कन्हैया के नाम से जानता है। मैं वासुदेव पुत्र कृष्ण राजा हमने तुम्हारी परीक्षा दी और उस परीक्षा में तुम सफल हुए। भगत के आगे झुक जाता है भगवान देवताओं से बढ़कर हो जाता है इंसान। राजन आने वाला इतिहास तुम्हें महादानी राजा मोरध्वज के नाम से पुकारेगा ये मेरा आशीर्वाद है।
वासुदेव मेरी भी आपसे एक प्रार्थना है कि कलयुग में आप किसी भी इस तरह से परीक्षा न लें।
ठीक है खुश रहो।
प्रणाम महाराज।